I'd like to thank all of you for very kindly taking your precious time to come to this most auspicious place of Sri Ram Mandir, to join us to hear and chant the glories of the Supreme Personality of Godhead.
मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग इधर आपका समय निकाल कर इकट्ठे हुए हैं ये बहुत ही मंगलमय जगह में श्री राम जी का मंदिर में भगवान की महिमा का श्रवण करने के लिए
In fact, each moment really is so precious. The Vishnu Purana explains that there is nothing so precious in all of creation as each moment that we have in this valuable and rare human form of life. And there is no greater misfortune than to waste a single moment in forgetfulness of Lord Narayan. And there is no greater fortune than utilizing any moment in the loving remembrance of Sri Ram.
हमारा हर एक क्षण जो है वो बहुत कीमती है श्रीमद् विष्णु पुराण में बताया जाता है कि इस दुनिया में हमारे इस दुर्लभ मानव जीवन में एक क्षण के ज्यादा और कोई भी कीमती चीज नहीं है और अगर इस मानव जीवन में हम एक क्षण भी हम व्यर्थ करेंगे तो इससे बड़े कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है तो दुर्भाग्य इसमें है कि हम मानव जीवन में एक एक क्षण नारायण को भूल जाएं और सबसे अच्छे भाग्य की बात यह है कि हम मानव जीवन का हर एक क्षण श्री भगवान नारायण के स्मरण में हम बिताएं
भगवान has appeared in so many times, so many places, so many forms, just to reveal His supreme love, His supreme power, and thus attract our minds to always thinking of Him.
भगवान अनेक समय में, अनेक जगह में, अनेक रूप में अवतार लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो अपना परम प्रेम, अपनी परम शक्ति हमें दर्शाएं और हमारे मन को उनकी ओर आकर्षित करें।
Today there are so many social events. People come together to hear very materialistic music and dance together. People come to drink together, to eat together, to go to the cinemas, to go to the concerts, to go to the sporting events. But the real purpose of society is to give people the opportunity to come together, to hear the glories of the Lord, to chant and dance in glorification of the names of God, and to partake of the holy prasad of the Lord together. And to the degree this is missing from our society, to this same exact degree, there will be terrible suffering in this world.
तो आज हमारे समाज में हम देखते हैं कई घटनाएं होती हैं और लोग इकट्ठे होते हैं पूरी तरह से भौतिक संगीत या भौतिक नृत्य देखने के लिए या इसका आनंद उठाने के लिए या लोग इकट्ठे होते हैं खाने या पीने के लिए या फिर तो लोग इकट्ठे होते हैं सिनेमा देखने के लिए या कोई संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए या कोई खेलकूद के कार्यक्रम में जाने के लिए पर वास्तव में समाज का उद्देश्य ये है कि जो मानव जीवन से मानव हैं उनको ये अवसर देना कि वो भगवान की महिमा के बारे में श्रवण करें और उनके नाम के बारे में श्रवण करें और कीर्तन करें और जिस हद तक हम ये चीज नहीं करते हैं हमारे समाज में उसी हद तक हमारे समाज में हम देखेंगे कि अत्यंत दुख फैला हुआ होगा
But we are so foolish. that we think that we do not have time to regularly come to associate with sadhus, to hear and chant the glories of the Lord, because we have so many priorities, maintaining our families, building our businesses, that this religion is a luxury. It is not a luxury. It is the ultimate necessity of life. The soul can find no peace without the remembrance of God any more than a fish can find peace without water.
पर हम इतने मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं कि हमें समय नहीं है सत्संग के लिए या तो फिर भगवान के गुणगान का श्रवण करने के लिए। हम सोचते हैं हमारे जीवन में और कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, जिस तरह से हमारे परिवार का देखभाल करना है या हमारे व्यापार को और भी बढ़ाना है। हम सोचते हैं कि जब ये सब काम हो जाएंगे तो फिर अगर समय मिले तो सत्संग में जाएंगे। वास्तव में सत्संग से ज्यादा आवश्यक कोई चीज नहीं है। जिस तरह से एक मछली पानी के बाहर नहीं रह सकता है, वास्तव में उसी तरह से आत्मा जो है वो भगवान के नाम के कीर्तन और श्रवण के बाहर सुखी नहीं रह सकता।
Yet we are dedicating our lives to feeding our bellies, which are always causing us so much trouble. They're never satisfied for long. Or satisfying our egos. The more you feed it, the more unbearable it becomes. But how much we are neglectful of the needs of the soul, the Atma, who is thirsting, dying for the beautiful sound of God's holy name.
हम हमारा सारा जीवन इसी के लिए अर्पण कर रहे हैं कि हम हमारे पेट की सेवा करें जो कि हमें इतना दुख देता है। उसी तरह से हम हमारे अहंकार को, मिथ्या अहंकार को भी हम उसकी सेवा करते हैं, और जितनी हम हमारी अहंकार की सेवा करते हैं हमें अनुभव होता है कि उतना ही ज्यादा हमें दुख मिलता है, उतना ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर हम हमारी पेट और हमारे अहंकार की देखभाल तो करते हैं, पर हमारी आत्मा का देखभाल नहीं करते हैं, जो कि भगवान के नाम, भगवान के कीर्तन और भगवान के महिमा को श्रवण करने के लिए तरस रहा है।
The Supreme Personality of Godhead appeared in this world as Lord Sri Ramchandra, and the Goddess of Fortune, Sri Lakshmi Devi, appeared as his eternal consort, Sita Devi. In this particular, most wonderful and munificent incarnation, they came to show us, by their example, how to live as a perfect married couple, as the most perfect human beings that we can all follow and make them the model of our very life. Imagine how kind the Lord is. Not only does he give us teachings, but he personally appears to show us by his example the ideal way of living together with your wife.
भगवान ने अवतार लिया है कई रूपों में, पर ये जो उन्होंने अवतार लिया है श्री रामचंद्र का, और उनके साथ में लक्ष्मी जी ने अवतार लिया सीता देवी का है, तो इस बहुत ही खूबसूरत और मन को आकर्षित करने वाले अवतार में भगवान इसलिए आए हैं कि हमें समझाने के लिए कि गृहस्थ आश्रम में हम किस तरह से अच्छी तरह से जी सकते हैं और हमारे मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि भगवान कितने दयालु हैं। वो तो हमें उनकी शिक्षा देते ही हैं, पर उसके अलावा स्वयं अवतार लेते हैं अपने खुद की जिंदगी से सिखाने के लिए कि हमें किस तरह से इस दुनिया में घरेलू जीवन में हमें जीना चाहिए।
We are so much attached to trying to get more and more and more of the things of this world to give us some sense of security and enjoyment. Ramchandra was meant to be coronated as king. Due to the envy of Kaikeyi, He was banished to the forest for 14 long years. Of course, we know the story. Sita was determined to follow him. And all the citizens of Ayodhya, including his own father Dasarath and mother Kausalya, they were begging him, pleading with him to kindly stay and enjoy the throne of the kingdom of Ayodhya and remain with his loved family members and remain with all his beloved, loyal, and dedicated citizens. But Lord Sri Ramchandra, he did not consider his own comforts. He did not consider wealth or prestige. He only considered truth. And therefore, in pursuance of loyalty to truth, he left the kingdom of Ayodhya. He took off his jeweled garments to put on the bark of trees and live in the forests.
हमें इस दुनिया की चीजों से इतनी आसक्ति है क्योंकि हम इन चीजों से आनंद भोगना चाहते हैं। श्री राम के कथा में हम सुनते हैं कि वो राजा बनने के अधिकारी थे, पर रानी कैकेयी की ईर्ष्या की वजह से उनको वन में 14 वर्ष के लिए जाना पड़ा, और सीता देवी भी दृढ़ निश्चय कर बैठी थी कि वो भी उन्हीं के पीछे वन में जाएंगी। अयोध्या के सारे निवासी और राजा दशरथ और सारे जो महल के निवासी थे वो सब बहुत प्रार्थना कर रहे थे श्री राम से कि वो अयोध्या में ठहरें और निवासियों को वो संगत दें उनका, पर श्री राम ने इन बातों को सुनी नहीं क्योंकि वो उनके स्वयं के संतुष्टि के लिए या उनके धन या सम्मान के लिए वो उसके बारे में सोच नहीं रहे थे। वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहे थे, वो है सत्य, और सत्य की वजह से ही वो अयोध्या छोड़कर वन में निवास करने रवाना हो गए। उन्होंने अपने जो महंगी कीमती जो कपड़े थे, राजघराने के कपड़े थे, वो निकाले और फिर बहुत ही वन के जो कपड़े हैं वो पहनकर वो वन में चले गए।
He took up residence at the foot of the holy mountain called Chitrakoot. And there, he lived a very simple life. Lakshmanji, his brother, with his own hands, built with straw and wood lying in the forest, a very, very simple hut. Nothing in comparison to the royal palace of Ayodhya. Just a little straw hut.
और वन में जाने के पश्चात श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी उन्होंने चित्रकूट पर्वत के निकट वहां उन्होंने निवास स्थान अपना बसाया और वहां पे बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथों से एक छोटी सी कुटिया बनाई श्री राम के लिए जो कि घास और लकड़ी से बनी हुई थी, और इसकी तो हम अयोध्या के राज दरबार से, महल से कैसे तुलना कर सकते हैं।
In Ayodhya, Sri Ram had Kausalya and the finest cooks in all the world preparing him the most wonderful opulent dishes. But in Chitrakoot, Lakshman would simply gather raw leaves and fruits that were lying in the ground and growing in the trees, and a few herbs. And this is what Sri Ramchandra would take for prasad.
Ayodhya mein Sri Ram ke liye anek tarah ke swadisht vyanjan banane ke liye mata Kausalya thi, और हर तरह के रसोईया थे जो कि अलग अलग पदार्थ उनके लिए बनाया करते थे। पर चित्रकूट में लक्ष्मण जी जो सिर्फ छोटे छोटे जो वीड्स हैं और फल हैं जो कि जमीन में पड़े हुए थे या पेड़ों पे थे या ऐसे जड़ी बूटी वन से निकालते थे और इसी से गुजारा करना पड़ता था.
So, if any of us had to live in the forest under those circumstances, we would probably be in too much anxiety. Think, what have I lost? How much I should be going back into the city to try to get more and more and more wealth, get my kingdom back. But Ram was perfectly satisfied. In fact, he considered this to be the blessing of God.
अगर हम में से किसी को ऐसे ही परिस्थिति में वन में निवास करना पड़े तो हम बहुत चिंतित अवस्था में हो जाएंगे. हम सोचेंगे मैंने कितना खो दिया है, मुझे प्रयास करना चाहिए अपना राज्य फिर से प्राप्त करने के लिए. पर श्री राम जो हैं वो बिल्कुल संतुष्ट थे और इस विचार से अपना जीवन बिताते थे कि ये भगवान की कृपा है.
In fact, one day he was speaking with Mother Sita and he told them, her, that we have left the beautiful city of Ayodhya and all the kingdom and citizens. But just see, now we have a better kingdom. These beautiful, peaceful forests of Chitrakoot are far superior to the kingdom of Ayodhya. Here we have our citizens, all the birds and the wild animals and the trees and the plants. And here we have the greatest wealth, the greatest opulence in all of creation. We have the association of the sadhus. We can hear from them daily. We can serve them daily. Sita, these are the most pleasurable, happy moments of my life.
एक दिन श्री राम सीता जी से कहने लगे, हम तो अयोध्या का राज्य हमारे पीछे छोड़ आए हैं, पर ये देखो कि अब इस वक्त हमारे पास और भी एक सुंदर राज्य है. ये जो बहुत ही सुंदर वन है चित्रकूट का, इससे बड़ा राज्य कौन सा हो सकता है. यहाँ भी हमारे प्रजा है, पेड़ हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, और सबसे बड़ा जो धन हमारे पास है वो है ऐसे महान साधु महात्माओं का संगत, और उनसे हम हर रोज भगवान के बारे में श्रवण कर सकते हैं, इन साधुओं की सेवा कर सकते हैं. तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है.
Try to understand, please, that these years that Sri Ram spent in Chitrakoot Forest were the happiest, most peaceful, most blessed and pleasing moments of his life. Why? Because he had no other distractions from simply hearing from the great sadhus, worshipping them, serving them with his heart and with his soul. Ram considered that such service to the sadhus is a greater wealth than all the kingdom of Ayodhya.
ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो वर्ष श्री राम ने चित्रकूट में बिताए वो उनके जीवन के सबसे खुशी के दिन थे. ऐसा क्यों? क्योंकि इन दिनों में श्री राम को ये सबसे अच्छा मौका प्राप्त हुआ कि वो महान संत महात्माओं से वो भगवान के बारे में श्रवण करें, उनकी पूजन करें, उनकी सेवा करें. और श्री राम के विचार में ऐसे महात्माओं की सेवा करने से ज्यादा इस दुनिया में और कोई भी धन नहीं है.
By this example, the Lord is showing us what is really important in life.
इस उदाहरण से श्री राम हमें बताना चाहते हैं कि हमें समझना चाहिए कि जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण चीज क्या है.
In the Bible it is said, what is the use if you gain the whole world if you lose your immortal soul?
बाइबल में बताया गया है कि अगर आपने सारे दुनिया को भी प्राप्त कर लिया है, पर अगर आप अपनी आत्मा को खो बैठे हैं तो फिर इसका क्या फायदा है?
So this in fact is the number one supreme most important responsibility for every human being to come together as we are doing tonight in this beautiful temple to hear the glories of the Lord and to chant His holy names.
तो इस दुनिया में हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यही है, हमारा कर्तव्य यही है कि हम इस तरह से जैसे कि आज हम इकट्ठे हुए हैं, हम एक संग आएं और भगवान के नाम, भगवान की महिमाओं का श्रवण करें और उनका नाम का कीर्तन करें।
But it must be done under the direction of genuine sadhus who are humble servants of the previous acharyas.
पर ये जो है ऐसे वास्तविक साधुओं के आदेश के अनुसार करना चाहिए जो कि परंपरा में आए हुए और साधुओं के से शिक्षा पा चुके हैं।
And it must be done regularly, just like we regularly eat to maintain strength. If we do not regularly have sadhu satsang and hear and chant the glories of the Lord, then we will not be able to maintain our spiritual strength and withstand the power of Maya in our life.
पर ये जो है सत्संग नित्य होना चाहिए। जिस तरह से अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो शरीर जो है कमजोर हो जाता है, उसी तरह से अगर हम सत्संग नित्य नहीं करेंगे तो फिर हमारी आध्यात्मिक शक्ति घट जाएगी और फिर इस दुनिया के जो माया का प्रभाव है उससे हम पराजित हो जाएंगे।
So during the divine leela of Sri Ram, he protected his devotees from so many asuras, Kumbhakarna, Indrajit, Ravana, and he also gave so much pleasure to his devotees.
और इस दिव्य लीला के अनुसार के समय श्री राम ने अपने भक्तों को असुरों से बचाया, जैसे कि कुंभकर्ण, इंद्रजीत, रावण इत्यादि, और उन्होंने उनके भक्तों को भी बहुत आनंद दिया।
And in the same way, the Supreme Lord appeared in his original form of Sri Krishna to give pleasure to his devotees by playing upon his flute, by performing his wonderful, wonderful leela and protecting them from all the dangers of this world.
और उसी तरह से भगवान जो हैं अपने आदि रूप में श्री कृष्ण के रूप में आए हैं, और इसलिए कि अपने भक्तों को आनंद दें अपने बांसुरी बजाते हुए और उनके भक्तों की रक्षा भी करें।
Lord Sri Ramchandra ji, Bhagavan Sri Krishna, they came to this world, they taught us, they performed their wonderful pastimes and they left. But in the divine form of the sweet and holy sound of the name, they are always present to give us that same pleasure and that same shelter.
Shri Ram aur Shri Krishna to इस दुनिया में आए, उनकी लीला उन्होंने हमें दर्शाए और फिर वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, पर उनका जो दिव्य नाम है जो कि बहुत ही मधुर है और जो कि हमें पावन कर सकता है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा हमें शक्ति देने के लिए।
श्री राम इज इटर्नली मैनिफेस्टिंग हिमसेल्फ विद इन द साउंड ऑफ हिज नेम and he is inviting everyone at all times to simply take this holy name, to share this holy name amongst one another. And through this process we can always experience the divine presence of Sri Ram in our life, purify our hearts and attain eternal love, eternal peace.
श्री राम अपने नाम में नित्य रूप से स्थित हैं और वो सारे बद्ध जीवों को वो निवेदन कर रहे हैं कि आओ ये नाम का संकीर्तन करो और अपने आप में ये बांटो। और इस तरह से नाम का श्रवण कीर्तन करने से और अपने आप में बांटने से श्री राम की दिव्य उपस्थिति हम हमारे जीवन में अनुभव कर पाएंगे और इस तरह से हमारा हृदय जो है शुद्ध हो जाएगा और फिर हम भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे।
When Lord Sri Ramchandra left this world, Hanuman was feeling the plight of separation. But he made a vow that because Ram is none different than his name, as long as anyone in this world is chanting his holy name, he will remain here to protect them.
जब श्री राम इस दुनिया छोड़ के चले गए तो हनुमान जी को विरह की भावना बहुत गहरी हो गई, पर फिर भी उन्होंने एक व्रत लिया कि क्योंकि श्री राम में और श्री राम के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेगा वो स्वयं उसकी रक्षा करेंगे।
सो दिस इज रियली द ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट फॉर्चून इन आवर लाइफ एंड द मोस्ट प्रेशियस अपॉर्चुनिटी इन ऑल ऑफ क्रिएशन to come together to chant the holy names of Krishna. Everyone please rise.
To ye sabse badi bhagya ki baat hai ki hame ye bahut hi durlabh aur amulya avsar mila hai ki hum satsang mein aakar bhagwan ke naam ka kirtan ek saath karenge.
We should chant the holy names with great enthusiasm and great feeling.
हमें भगवान के नाम का कीर्तन बहुत ही उत्साह से और बहुत ही भावना से हमें करनी चाहिए।
And we should know that in order to invite Krishna to manifest himself within his name, we have to live our life in such a way that we will attract his mercy.
और अगर हम भगवान को उनके नाम में अवतार लेने के लिए अवतार लेना चाहते हैं तो फिर हमें हमारे जीवन इस तरह से बिताना चाहिए कि भगवान अपनी कृपा हम पे न्योछावर कर पाए।
By avoiding illicit sex, intoxication, gambling, meat eating, the four pillars of sinful life, associating with holy men in a spirit of submission, quickly the holy name will transport our minds to the spiritual world.
चार नियमों का पालन करते हुए और सत्संग में हमेशा रहते हुए और नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए हम सीधे आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकते हैं।
Everyone, please raise your arms.
कृपया सब लोग आपके हाथ ऊपर कीजिए।
And with great sincerity and feeling, let us call out for the mercy of Sri Krishna.
और बहुत ही भावना से हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा के लिए हमें पुकारना चाहिए।